शांति। आज का विषय है अनुभव की अथॉरिटी। कहा जाता है अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हम समय समय पर बाबा की मुरलियों में भी सुनते हैं कि अनुभव जैसी अथॉरिटी कोई नहीं है। जिसके पास अनुभव है वो सदा विजयी है। अनुभवी को कभी माया धोखा नहीं दे सकती है। अनुभवी सदा जीवन के और माया के हर पेपर में पास होकर के सदा आगे बढ़ता रहता है। तो इसी बात को हम बहुत गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अनुभव की अथॉरिटी बने। अभी जैसे बताया ना, दुनिया में भी कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि, रवि माना सूर्य, वहां पहुंचे कवि, कविता लिखने वाला उससे भी आगे पहुंच जाता है, और जहां ना पहुंच सके कवि वहां पहुंचे अनुभवी, है ना। कभी भी परमधाम सूक्ष्म वतन को समझ नहीं सकता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को नहीं समझ सकता है, किंतु अनुभवी, हम जब बच्चे अनुभवी बन जाते हैं तो हम सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को, परमात्मा के राज को, और साथ साथ सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन की क्या लीला वहां पर चलती है, वो क्या है सूक्ष्म वतन रियलिटी में, और परमधाम क्या है ना, कर्मों की गुह्य गति क्या है, उसको बहुत गहराई से समझ जाते हैं, और इतना समझ जाते हैं कि हम बिना बोले भी आने वाले, अभी तो हम बोलते हैं, मुख से बोलते हैं, तो आने वाले समय में हम बिना ही बोले, आज उस बात की हम बात करेंगे, बिना ही वाणी के भी हम दूसरों को समझा सकें, दूसरों को ऐसे वाइब्रेशंस दे सकें, इतनी शक्ति उनको प्रदान कर सकें कि वो आने, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं 99% आत्माएं हमारे इस ज्ञान में नहीं आएंगी। लगभग 99% आत्माएं दुनिया में, अगर हम 800 करोड़ आत्माएं कहते हैं तो 800 करोड़ में से मुश्किल से 1 या 2% आत्माएं ही अंत तक भी बाबा के ज्ञान को समझ पाएंगी। हाँ, परमात्मा आ गया है, बाबा आ गया है, ये मैसेज 800 करोड़ आत्माओं को मिलेगा, पर इस ज्ञान को समझ के थोड़ा भी 1% भी अपने जीवन में लाने वाले सिर्फ 1% ही होंगे सारे विश्व में से। तो वो बाकी जो 799 करोड़ आत्माएं जो होंगी, उन आत्माओं तक वो समझें कि बाबा आ गया है, परमात्मा आ गया है, वो मैसेज, वो भी अनुभवी आत्माओं के द्वारा ही पहुंचेगा। वो भी मैं समझता हूं कि मीडिया के द्वारा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा आती हैं, पॉजिटिव कम आती हैं, और नेगेटिव बातों में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, पॉजिटिव बातों में कम होता है, समय की लहर देखते हुए, राइट। किंतु जब दिल को कोई बात लगती है, जो दिल को छू जाती है, जैसे सर्दी के मौसम में सर्दी सबको लगती है, गर्मी के मौसम में गर्मी सबको लगती है, तो जब हम ऐसी स्थिति अपनी बना लेंगे, हमारा वायुमंडल, हमारा, हम इतना अच्छा वायुमंडल अपने आसपास, उसकी हम बात करेंगे, अपने वायुमंडल के मन, अपने आभा मंडल की, प्रभा मंडल की बात करेंगे, और हमारे वाइब्रेशंस कैसे विश्व के हर आत्मा तक पहुंचेंगे उस समय अनुभवी बनने के बाद, क्योंकि अनुभवी ही अनुभव करा सकता है। जिसको खुद को अनुभव नहीं है वो दूसरों को अनुभव नहीं करा सकता है। हमें अपने अंदर इतनी शक्ति भरनी होगी, ये सामने वाले सोफे पे ना कोई भाई बहन आके बैठ सकते हैं, उधर साइड से आके भी, इधर आके सामने ना, बहने बैठना चाहे बहने बैठ सकते हैं, भाई बैठना चाहे भाई बैठ सकते हैं, पीछे वाले सोफे, इधर से भी आके लोग आके बैठ सकते हैं, इधर सामने वाले सोफे पे आ जाइए, सामने वालों पे आ जाइए, सामने कोई भी आके बैठ सकते हैं, भाई पीछे वाले, इसके पीछे वाले भी बैठ सकते हैं, कोई भी आके बैठ सकते हैं, पीछे और भी बैठ सकते हैं, بہنوں کی طرف بھی صوفوں پر نہیں, آگے جگہ خالی ہے تو آگے آ کے بیٹھ سکتے, ادھر سے آگے آ جاؤ, ادھر سے پیچھے سے بھی اٹھ کے آگے آ سکتے ہیں. ہاں جی, تو انوبھو کی اتھارٹی میں نے اس بتایا کہ انوبھوی ہی انوبھو کرا سکتا ہے. آج ہم دنیا میں بات کرتے ہیں پوترتا کی بات کرتے ہیں, شانتی کی بات کرتے ہیں, ہے نا, پیار کی بات کرتے ہیں, روحانی پیار کی بات کرتے ہیں, اتیندری سکھ کی بات کرتے ہیں, آنند کی بات کرتے ہیں, وہ سب کی سب چیزیں کون انوبھو کرا سکے گا؟ جو خود پوترتا پوتر رہ رہا ہوگا, جس نے پوترتا کو جیون میں دھارن کیا ہوگا, جنہوں نے پوترتا کو جیا ہوگا اپنے لائف میں, شانتی کو جیون میں دھارن کیا ہوگا, جنہوں نے اس شانتی کی گہرائیوں کو انوبھو کیا ہوگا, روحانی پیار کی پاور کو محسوس کیا ہوگا, جنہوں نے اتیندر سکھ کے جھولوں میں جھول کر کے دیکھا ہوگا بابا کے ساتھ, جنہوں نے آنند کے جھولوں میں جھولا ہوگا, جو ہر سمے جھولتے رہتے ہیں, ان کے آس پاس اتنا زبردست آبا منڈل اکٹھا ہو جائے گا, ان سے ایسے اسٹرانگ وائبریشن نکلیں گے جن کو وہ وائبریشن ٹچ کریں گے, جیسے ٹھنڈی کی ہوا آتی ہے, ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو ٹھنڈ لگتی ہے نا, تو سیم وے ہم اتیندر جیسے ہم مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے اور مگر میرے اندر سے ٹھنڈی کے وائبریشن یا کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا چلے تو سامنے والے کو بھی اتنی ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے گی, یہ گرمی لگنی ہے تو گرمی لگنی شروع ہو جائے گی. تو جیسے سائنس کے ہم اکوپمنٹ سے, سائنس کے سادھنوں سے ہم گرمی سردی کا انوبھو کرا سکتے ہیں, ایسے ہی جو بھی ہمارے اندر وائبریشن ہوں گے, جو بھی ہمارے اندر کی استھتی ہوگی, وہ ہم دوسروں کو بھی انوبھو کرا سکیں گے. پوترتا پر بھاشن کرنا بہت سہج ہے, شانتی پر بھاشن کرنا بہت سہج ہے, کنتو کسی کو بنا بولے انوبھو ہو جائے, کیونکہ ابھی وہ سمے آ گیا ہے, ابھی وہ سمے آ گیا ہے, لوگ ابھی سننا نہیں چاہیں گے, لوگ ابھی کرنا بھی نہیں چاہیں گے, صرف لوگ انوبھو کرنا چاہیں گے. ابھی کل بھی پرسوں بھی بابا نے کہا یہ ابھی سماپتی ورش ہے. کون سا ورش ہے سماپتی ورش؟ مانا ابھی ہمارا سماپتی کا مطلب وشو کی سماپتی کا نہیں ہے, وشو کی سماپتی تو دھیرے دھیرے ہو جائے گی, اگلے آنے والے چار پانچ سال میں ہو جائے گی, کنتو سماپتی ورش کا ارتھ کیا ہے کہ اس سمے شاید جو ڈائریکٹ جیسے ابھی جو پالنا کا ورش جو پالنا ملتی ہے ہمیں ابھی بابا سے یا ایسے ملتا ہے ہم کو, وہ پالنا کا ابھی بابا نے ہم کو بہت پڑھا ہے, بہت پڑھا ہے پچھلے 49 سال سے, کتنے سال سے لگ بھگ ہوئے 48 سال, 49 سال ہی ہو گئے ہیں نا, 49 ایئر سے بابا ہمیں پڑھا رہا ہے, اویکت روپ میں پڑھا رہا ہے, اس کا روپ ریکھا بھی بدل گئی ہے. اب ہم اس بات میں تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں کہ انوبھو کی اتھارٹی کیسے بنے, انوبھو کیسے ہوتا ہے, اس پہ چلتے ہیں. چلے ایک منٹ سبھی دوبارہ سائلنس میں بیٹھ جائیں اور اگلے لگ بھگ 45 منٹ کے لیے, گھنٹے کے لیے آپ اپنا موبائل اگر ان کا آن ہو تو سائلنس موڈ میں ڈال دیں, تاکہ من بدھ ایکاگر کر کے آپ بات سنیں گے, سمجھیں گے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور تبھی ہم پریکٹیکل لائف میں لا پائیں گے. ایک منٹ سبھی سائلنس میں بیٹھ جائیں, لائٹ وائٹ میں ہی. ओम शांति। अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए हमको क्या क्या अनुभव करना है, जो भी हमारे, जैसे बाबा बार बार मुरली में कहता है कि ज्ञान के जो भी पॉइंट्स हैं, बल्कि जो बाबा की मुरली है, मुरली का जो एक एक महावाक्य है, मुरली के एक एक महावाक्य में बहुत बहुत गुह्यता है। मैं हमेशा 7 बातें मुरली के हर महावाक्य में कोशिश करता हूं ढूंढने की। मुरली के एक एक महावाक्य में गुह्यता है, हर गुह्यता मतलब बहुत गहराई है, पहली बात। दूसरी, मुरली के हर महावाक्य में बहुत सारे राज समाये हैं, राजयुक्त है। हर मुरली का महावाक्य में बहुत राज है, बहुत सीक्रेट है। मुरली का हर महावाक्य रहस्य युक्त है, उसमें बहुत सारे सस्पेंस है, मतलब इंग्लिश में कहें सस्पेंस है। मुरली का हर महावाक्य में कई महीन महीन बातें हैं, मतलब महीन सूक्ष्म बातें, महीन महीन बातें हैं और सूक्ष्म बातें हैं हर महावाक्य में। मैं तो कई बार जब अमृत वेले मुरली के बाद वॉकिंग करते हैं 45 मिनट्स, कई बार तो मुरली का एक महावाक्य का ही रस लेने में मुझे 45 मिनट लग जाते हैं, एक महावाक्य में, एक लाइन को ही बार बार अनुभव करने में। जैसे पीछे मुरली थी ना, तुम हो रूहानी आशिक एक परमात्मा, एक माशूक परमात्मा के, इस लाइन को ही मुझे 30 मिनट के लिए, इतनी सी बात के लिए मुझे 30 मिनट उसको अनुभव करने में लगे ना, उसका एक एक रस, मतलब इस साकार वतन में रहते हुए सूक्ष्म वतन में इसका अनुभव करने के लिए और परम धाम में इसका अनुभव करने के लिए। तो इतनी उसमें गुह्यता है, उसके क्या गुह्यता है उसमें, हर मुरली के उसमें 7 बातें हम ढूंढ सकते हैं। गुह्यता ढूंढे, उसमें क्या राज है, उसमें क्या क्या रहस्य है उसके पीछे, क्योंकि सीधी सीधी बात नहीं है। उसमें 700, अभी इस समय 750-800 करोड़ आत्माएं जितनी भी हैं, बल्कि बाबा के अगर 15 लाख बच्चे हैं आज, ये लगभग 15 लाख बच्चे हैं जो बाबा की मुरली को या तो सुनते हैं डायरेक्ट, या पढ़ते हैं, या टीवी पर या मोबाइल पर देखते हैं। लगभग 15 लाख बच्चे ऐसे जो रेगुलर बच्चे हैं आज के दिन। उन 15 लाख बच्चों की हर बात का आंसर, हर समस्या का आंसर इसी 4 पेज की मुरली में होता है। और सबकी समस्याएं डिफरेंट डिफरेंट हैं। कोई भी मुरली उठा के आप पढ़ लें और मुरली ध्यान से पढ़ लें, अटेंशन से पढ़ लें, इस निश्चय और नशे से सुन लें, पढ़ लें या सुन लें कि परमात्मा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, सारे विश्व का मालिक है, प्रकृति पति है, 5 तत्वों का भी मालिक है, उसके महावाक्य हैं, जो सारे विश्व का रचता है, सत्य है, चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, उसके ये महावाक्य हैं। अगर इस नशे से हम पढ़ लें तो क्या हो, उसकी प्रॉब्लम मुरली पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो जाती, आंसर हो जाती है, उसको अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। खाली समाधान नहीं मिलता है, शक्ति भी मिल जाती है कि उस समस्या को पार कर सके। तो इसलिए मुरली के जो मैंने बात 7 बातें पहले पूरी कर दूं फिर आगे चलते हैं। तो एक तो गुह्य है हर महावाक्य, दूसरा उसमें बहुत सारे राज समाये हुए हैं, तीसरा उसमें बहुत सारे रहस्य समाये हुए हैं, चौथा उसमें कई सूक्ष्मताएं हैं। सूक्ष्म माना बहुत ही, मतलब ऐसी बातें हैं जो मतलब इस आंखों से समझी नहीं जा, आंखों से देख नहीं सकते, इस दिमाग से समझी नहीं जा सकती। और कई सारी बहुत महीन बातें हैं, महीन, इतनी महीनता है उनके अंदर, उसके लिए आपको मतलब मन बुद्धि को बहुत एकाग्र करना पड़ेगा समझने के लिए। दिखाई नहीं देंगे आपको, उसका रियल अर्थ समझ में नहीं आएगा। अंदर जाओगे, जब तक आप सूक्ष्म तत्व में जाके बाबा से डायरेक्ट नहीं पूछोगे तो समझ नहीं पता लगेगा। बाबा से पूछना पड़ता है, बाबा इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या महीनता है। और फिर मुरली की हर महावाक्य बहुत रमणीक है, वो ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बोरिंग नहीं है। और छठी जो बात है वो हर महावाक्य अमूल्य है, अमूल्य माना ऐसी उसमें पावरफुल बात है, ऐसी उसमें पावर है कि इस दुनिया में उसका कोई मूल्य नहीं आप नाप सकते। तो सात बातें रखकर के बुद्धि में रखें तो मुरली का हर पॉइंट को हमें अनुभव करना है। जैसे आज की मैं एक बात लेता हूं, बाबा ने कहा मर्जीवा बने हो तो बाप के बने हो, तो बाप से वर्षे के अधिकारी बने हो, और तुम्हें लॉटरी मिली है, इस लॉटरी से तुम ना इस जन्म बल्कि आने वाले 21 जन्मों के लिए तुम विश्व का राज्य भाग्य पा लेते हो, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो एक बात और थी लाइन में, उसी में लाइनें जुड़ी होती हैं आपस में, कि अभी तक मर्जीवा का मतलब जो अभी तक नहीं मर्जीवा बने हैं, जो अभी तक इस दुनिया से नहीं मरे हैं, जो अभी तक इस दुनिया से नहीं मरे हैं वो बाप के नहीं बन सकते हैं, वो बाप के नहीं बन सकते, उन्हें 21 जन्म का राजभाग भी प्राप्त नहीं हो सकता। और वो बाप को याद भी नहीं कर सकते हैं। देखो बहुत अथॉरिटी से महावाक्य हैं ये, पहले चार लाइनों में ही है जो बात मैं बोल रहा हूं, मुरली के चार पांच लाइनों में पहली मुख्य बातें हैं। वो बाप को याद भी नहीं कर सकते हैं, और जिन जो बाप को याद नहीं करते बाप भी उनको याद नहीं करता है, ठीक है, यही लाइन है ना। तो ये पांच लाइनों में पहली बातें दी हैं। तो मरना का मतलब क्या है, मनुष्य का मतलब, और हम ब्राह्मण हैं, मनुष्य का मतलब है जो मन के वश में हो, अर्थात जिसके मन में अपनी देह के संबंध, देह के संपर्क, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, ये काम क्रोध, देह का स्वभाव क्या है, ये एक विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, और देह के संस्कार, देह की आदतें कौन सी हैं, आलस्य अलबेदापन, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता डर, प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, और ईर्ष्या। तो ये देहवान की आदतें हैं। और अभी तक इस दुनिया में यही सिक्के चलते हैं, सिक्के माना यही कॉइन्स जो होते हैं ना, कॉइन्स नहीं तो जैसे रुपया, जैसे आजकल रुपया था ना, पहले रुपया हमारी करेंसी है ना, यही करेंसी यूज होती है। आज देहवान का सिक्का ही चलता है आपस में, देहवान का रुपया ही, हम आप सब देहवान में रहते हैं, हमारा देहवान, हम कुछ ज्यादा देहवान दिखाता है लोग उसकी मान लेते हैं, है ना, ज्यादा ईगो में आके बात करता है, मैं ये हूं लोग उसकी मान लेते हैं, मेरे देह के संबंध में ये है, इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे पास, इतने बड़े बड़े मेरे संबंधी इतने बड़े बड़े हैं, मेरे इतने लोगों से कॉन्टेक्ट है, लोग काम कर देते हैं, है ना। देह के पदार्थ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा मकान है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, है ना, है ना, इतना बैंक बैलेंस है, तो इससे ये चलता है आजकल, अभी भी चलता है ना। और देह के स्वभाव, क्रोध चलता है, क्रोध से काम बनता है दुनिया में ना, लोभ से बात काम बनता है, मोह अहंकार काम विकार से काम बनता है, और दूसरे सिक्के भी जो आलस अलबेलापन चिंता भय दिखा करके भी हम दूसरे से काम निकाल लेते हैं, शक अनुमान करके, दूसरे में दोष बता के, आपके अंदर ये भी दोष है, आपके अंदर भी दोष है, आपको उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का अनुभव करा देते हैं, जल्दीबाजी करके, ईर्ष्या द्वेष करके भी हम लोग इससे आज अपने काम निकालते हैं, आज की करेंसी ये है। किंतु बाबा के थोड़े से बच्चों को, हम जो बाबा के थोड़े से बच्चे हैं, 1% बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको क्या हुआ है, ब्राह्मण जो बच्चे हैं बाबा के, हमें बाबा ने से, जैसे मोदी ने अभी डीमोनेटाइजेशन किया था ना, नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया था ना, 500 1000 के नोट खत्म हो गए, यूज होने खत्म हो गए, यूज होने बंद हो गए थे। अभी ये करेंसी खत्म होने वाली है, ना देहवान का सिक्का चलेगा आने वाली दुनिया में, ना देह के संबंधों का सिक्का चलेगा, ना देह के पदार्थों का सिक्का चलेगा, और ना ही ये विकार रहेंगे। काम क्रोध लोम मोह अहंकार कोई वैल्यू नहीं, आलस सलबेलापन चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष का कोई वैल्यू नहीं। जैसे आज अगर 500 हजार का नोट लेके मार्केट में जाओ पुराने वाला, क्या आप उनसे एक गिलास पानी भी खरीद सकते हो? पुराने वाला हजार का नोट लेके जाओ, भैया मुझे एक गिलास पानी दे दो, देगा कोई आपको पानी? एक कोको कोला पिला दो, प्यास लगी बड़ी जोर से, पिलाएगा कोई पानी इससे? बताओ, पुराना वाला 500 का हजार का नोट लेके जाओ, कुछ मिलेगा उससे आपको मार्केट में? नहीं मिलेगा ना। किंतु हम जैसे मोदी ने अपने कुछ संबंधियों को बता दिया, कुछ मेन लोगों को बता दिया कि नहीं नहीं अभी करेंसी बंद होने वाली है ये वाली, तो उन्होंने अपने नोट पहले से चेंज करा लिए, है ना। एक्चुअली बाबा ने भी, हम बाबा के हम सिक्के लेते बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, तो बाबा ने हमको क्या बता दिया, बच्चे अभी करेंसी बंद होने वाली है, ठीक है, अब ये चलेगी नहीं, अभी नई दुनिया आने वाली है, और उस करेंसी, और बाबा ने परसों तो बता ही दिया समाप्ति वर्ष है ना। अब चाहे 10 करोड़ रुपए भी आपके पास होंगे, ये वाले पुराने वाले, एक 100 करोड़ भी होंगे, तो उससे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा एक रोटी भी नहीं मिलेगी 100 करोड़ रुपए से। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए भी हैं, 10 अरब 100 अरब रुपए भी हैं, उनसे आपको कोई रोटी नहीं मिलेगी आने वाले समय में, हो सकता अगले साल ही एक रोटी भी नहीं मिलेगी। जरा भी कोई देहवान के कितने भी आप बड़े हो, कितने भी बड़े पद पे हो, कितनी भी बड़ी आपकी नाम मान शान आज की दुनिया में हो, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपके कितने भी बड़े संबंध होंगे, कितना भी बड़ा आपका नाम होगा, दुनियावी नाम होगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो कागज के समान हो जाएगा, उसकी कोई से पूछेगा नहीं। कितने भी आपके पास सोना चांदी होगा, कितने हीरे जवाहरात होंगे दुनियावी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपका कितना रोब होगा, कितना भी आपके अंदर कुछ भी होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कौन से साल से? 2019 से, है ना, ठीक है। तो बाबा ने हमको पहले से बता दिया, तो अभी क्या करना है? अभी नई करेंसी चालू होने वाली है, डेट एग्जैक्ट बाबा ने नहीं बताई है, शायद बताएगा भी नहीं, अचानक से अनाउंस होगा कि अब के बाद ये करेंसी खत्म। कौन सी करेंसी शुरू? सोल कॉन्शियसनेस की करेंसी शुरू हो जाएगी। रूहानी प्यार, पवित्रता की करेंसी, शांति की करेंसी, अतीन्द्रिय सुख की करेंसी, आनंद की करेंसी, सत्य को परखने की शक्ति की करेंसी, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति की करेंसी, पहाड़ जैसी बात को भी राय बना देने की शक्ति की करेंसी चलेगी, समेटने की शक्ति, सब मन बुद्धि को समेट के सिर्फ एक में लगा देने वाली करेंसी चलेगी, बाकी कोई करेंसी नहीं चलेगी, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति करेंसी ही चलेगी, सत्यता निर्भयता यही करेंसी काम आएगी, मधुरता यही करेंसी काम आएगी, बाकी सब करेंसी फेल हो जाएंगे। सिर्फ दैवी गुणों की करेंसी चलेगी, बाकी जितने भी आसुरी अवगुण मनुष्य के गुणों की करेंसी फेल होने वाली है, खत्म होने वाली है अभी, इसलिए वो करेंसी खत्म हो रही है और नई करेंसी चालू हो रही है। इसलिए जितने जल्दी जल्दी से जल्दी क्या करो अभी करेंसी को, है, पुरानी करेंसी जमा करा के नई करेंसी ले लो। कौन से बैंक से? ईश्वरीय बैंक से, तो लेंगे वो ईश्वरीय बैंक, अभी खुला है ईश्वरीय बैंक, है ना, लेने का चांस है, फिर बाद में नहीं मिलेगा। और वो करेंसी का जो खजाना है वो मुरली के अंदर है, तो मुरली का एक एक पॉइंट को इतना गहराई से हमें उसको जीवन में लाना है। चल, हमारा जो योग है, हमारा जो ज्ञान है ना, ज्ञान बाबा का ज्ञान जो है, बाबा का ज्ञान है, बाबा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है, सदा सत्य माना, सत्य माना जो एटर्नल है, जो ना कभी पैदा, एटर्नल माना जो शाश्वत है, जो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है कभी वो मरता नहीं है, सदा ही अविनाशी है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, सदा ही सुप्रीम आत्मा है, उस आत्मा का नाम शिव है। और किंतु आत्मा आधा कल्प सत्य है, आधा कल्प असत्य है, आत्मा आधा कल्प सत्य है, आधा कल्प असत्य है, सत्य माना आत्मा आधा कल्प, उसको जन्म मरण का भान नहीं है, भले वो जन्म बदलती है, शरीर बदलती है आत्मा 150 साल के बाद अपने आप शरीर बदल लेती है, किंतु उसको भान नहीं है कि मैंने शरीर मतलब मैं मर गया, आत्मा को ये फीलिंग नहीं आती है, शरीर छोड़ना तो है समय पर वो तो ठीक है, किंतु जन्म और मृत्यु का उसको भान नहीं होता है। तो आधा कल्प आत्मा सत्य है, और आधा कल्प जब देह विमान आ जाता है, बॉडी कॉन्शियस हो जाती है आत्मा, तो उसको मरने और पैदा होने का भान आता है, तो आधा कल्प आत्मा असत्य है। शिव बाबा सदा सुंदर है, अर्थात शिव बाबा एवर प्योर है, सुंदर माना प्योर, पवित्र है, पावन है, किंतु आत्मा आधा कल्प पावन है सत्यु त्रेता में, और आधा कल्प श्याम है, माना विकारी बन जाती है, पतित बन जाती है। तो सत्य जो ज्ञान है, जो बाबा की मुरली है, बाबा सत्य है और बाबा की मुरली भी सत्य है, इस दो ही चीज इस समय दुनिया में सत्य है, एक बाबा सत्य है और एक बाबा की मुरली में जो महावाक्य है वो सत्य है। हमारी छोटी बुद्धि होने के कारण कई बार हम मुरली की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। मैं मुरली लगभग, मैं समझता 7वीं बार मुरलियां सुन रहा हूं, मैं मुरली लगभग 7वीं बार सुन रहा हूं, यही मुरली 5-5 साल बाद रिपीट होती है, और 7वीं बार हम मुरली का रिपीट हो रही है मेरे लिए। और इसके अलावा मैं बहुत मुरलियां पढ़ने की मुझे क्या कहें हैबिट है ना, चाहे व्यक्त मुरलियां हो चाहे साकार मुरलियां हो, दिन में 10 बार 15 बार 20 बार भी मैं उनको रिवाइज कर लेता हूं, है ना, अव्यक्त मुरलियां भी बहुत पढ़ता हूं। तो मुरलियां जो है मैं देखता हूं कि मैं मुरली शुरू में, और पिछले साल मैंने सुनी, उससे पिछले साल सुनी, और इस साल मैं सुन रहा हूं, तो जमीन आसमान का अंतर है। जो जो बुद्धि विशाल होती जाती, पावन होती जाती, उतना अधिक मुरली समझ में आती जाती, उसने अधिक मुरली के राज समझ में आने लगते हैं, उतने अधिक मुरली की गहराई समझ में आने लगती है, उतने अधिक मुरली के अंदर रहस्य समझ में आने लगते हैं, उतनी अधिक मुरली के लाइन में सूक्ष्मता समझ में आने लगती है, महीनता समझ में आने लगती है, बाबा कितना रमणीक है वो हमें समझ में आने लगता है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है वो समझ में आने लगता है। अभी भी मैं नहीं समझ सकता 100% को समझ में आती है, 100% उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। जितनी बुद्धि पावन हो जाएगी, मेरा मन पावन हो जाएगा, तो ही मुरली सही ढंग से अंदर आएगी। तो मुरली के एक लाइन का बहुत महत्व है, तो मुरली के एक लाइन को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। और मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं आपको, कैसे हम अनुभवी, बाबा ने एक मुरली में कहा था पीछे 15/12/2006 की मुरली थी, 15 दिसंबर 2006 की मुरली थी, तो अभी शायद आपने सुनी भी होगी, शायद अभी रिपीट भी हुई थी पीछे। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे आप सोचते तो बहुत हो, बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं सोचते हो, किंतु स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। अब सोचना स्वरूप बनके की बजाय स्मृति स्वरूप कैसे बने, क्योंकि स्मृति स्वरूप ही अनुभवी स्वरूप बन सकता है, अनुभवी मूर्त बन सकता है। तो बाबा ने कहा था उस मुरली में कि इसके पहले एक मुरली में था, बल्कि वो 31/12/99 की मुरली थी, 31 दिसंबर 99 की मुरली थी। तो उसमें बाबा ने समझाया था कि हमको अपनी जो मुरली के महावाक्य हैं, या एक एक लाइन है, एक एक महावाक्य है, मुरली का एक एक पॉइंट है, ज्ञान का एक एक पॉइंट है, क्योंकि ये सत्य है। और ज्ञान क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य की समझ। बाबा ने हमें इस मुरली के द्वारा हमें सत्य की समझ देता है, सत्य क्या है, ट्रूथ क्या है, तुम क्या हो। जैसे दादी जानकी बोलते हैं ना हमारे पास, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो मैं कौन हूं, सत्य क्या है? मैं देह नहीं हूं, देह तो आज पैदा होती है, एक दिन मर जाती है। मैं डॉक्टर हूं, ये भी एक दिन डॉक्टर बना, उस दिन आज डॉक्टर बना कल नहीं होगा डॉक्टर, है ना। मैं पिता हूं, मैं मेल हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मैं बेटा हूं, बेटी हूं, किसी का दोस्त हूं, ये भी रोल है, ये भी एक दिन पैदा होता है, एक दिन खत्म हो जाता है। तो जो चीज पैदा होती खत्म होती वो तो मैं नहीं हूं, वो तो असत्य है, झूठ है। सत्य है मैं आत्मा हूं। तो ये समझ मुझे आ गई, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं मां बाप नहीं, टीचर नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ये समझ में आया। फिर मेरे जो संबंधी हैं, ये जो संबंधी हैं मेरे देह के संबंधी हैं, ये मेरे संबंधी नहीं है, ये तो मेरे फर्ज हैं, पिछले जन्म के हिसाब किताब है, जिनके कारण ये तो मेरे कर्म बंधन है, पिछले जन्म में मैंने इनसे जो लिया दिया है वो मुझे वापस इनको करना पड़ेगा, या इनको जिनसे इनको दिया है तो मुझे वापस करेंगे, ये तो मेरे कर्म बंधन है, ये मेरे संबंधी नहीं है, ये तो बंधन है। संबंध मेरे उसके साथ है, सदा के संबंध, वो मेरा बाप है और मेरे सदा संबंध उसके साथ है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन। और सृष्टि रूपी ड्रामा जो है, संसार रूपी ड्रामा, इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले किया है, अभी पार्ट प्ले कर रही है और आगे भी पार्ट प्ले करती रहेगी। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है, सुप्रीम जस्टिस है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं और देते रहेंगे। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, बुरा कुछ भी नहीं हुआ है। बुरा हुआ, अच्छा हुआ है। मैं क्या समझ रहा था अभी तक? अच्छा नहीं हुआ है। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मुझे गालियां दी, है ना, मैंने उसके लिए बहुत किया, उसने मुझे क्या किया, मेरे 10 लाख रुपए ले लिए, वापस नहीं किए, मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, मेरे साथ बहुत खराब हुआ, मेरे माँ बाप ने भी मेरे से अच्छा नहीं किया, मेरे भाई बहनों ने मेरे को धोखा दिया, दोस्तों ने धोखा दिया, यही बातें मन में बार बार आती थी। मैंने शरीर कितनी संभाल की, ये भी ठीक नहीं रहता है, है ना, मैंने कभी कुछ खाया भी नहीं, है ना, सिर्फ सूखी सूखी रोटी सब्जी खाता हूं, सैर भी रोज करता हूं, तो भी देखो खराब हो गया, तो भी हार्ट की आर्टरी बंद हो गई, है ना, तो भी सांस नहीं आता ठीक से, तो भी सिर में दर्द होता है, है ना, तो ये सब ने मुझे धोखा दिया। वैसे मैं बहुत बड़े बड़े, मेरे पास तो एज ए हार्ट का डॉक्टर होने के नाते मेरे पास सब बड़े बड़े पैसे वाले भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, और फिल्म स्टार भी होते हैं उसमें से, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी होते हैं, है ना, हजार हजार करोड़ की टर्नओवर होती है, 1000 करोड़ रुपए साल की, वो भी आते हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका कैसे, आपकी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो गई, आपका तो, आप तो बहुत अमीर परिवार में आपका जन्म हुआ, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पास्ट कैसे बीता है? कहते डॉक्टर साहब बात मत पूछो, आप मुझे पुरानी बात याद मत दिलाओ, मेरा जीवन बहुत दुख से बीता है, मेरे को आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मेरे को, मेरा जीवन बहुत सुख से बीता है, अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। पिछले 37 साल मुझे हो गए प्रैक्टिस करते हुए, पेशेंट देखते हुए, 37 ईयर्स में मेरे को एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मेरा कि जीवन अच्छा बीता, अभी तक का अच्छा बीता है। क्योंकि जीवन ऐसा ही है, जैसे कि मैं अधिकतर एग्जाम्पल देता हूं कि एक भगोने में 2 लीटर दूध है, एक बर्तन है उसमें 2 लीटर दूध है, उसमें कि मक्खी गिर जाए तो हमें क्या दिखाई देता है? दूध दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में, हालांकि बातें तो बहुत अच्छी है, दूध तो हमारे जीवन में काफी होता है, कि तो जो हमारे माता पिता, जो हमारे पति पत्नी आपस में, या भाई बहन, या दोस्त, या बच्चे, कोई भी हो, पड़ोसी हो, कोई भी एक बात हमें गलत व्यवहार कर देते हैं ना, तो उसका चेहरा देखते ही हमें मक्खी याद आती है, दूध दिखाई नहीं देता है कि इसने हमें इतना सुख भी दिया है, वही गलत बात ही याद आती है। नहीं, क्या ख्याल है, गलत के ठीक? तो ये हमें, हमारे 90% विचार यहीं से चलते हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और बाबा ने क्या बताया, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हमने जो किया था उसके साथ पिछले जन्म में, उसने ब्याज के साथ वापस किया। तो ये जो बात है, ये समझनी है, इस समझ को चलते फिरते उठते बैठते हमें अनुभव करना है। सारे वैध संकल्प, सारे नेगेटिव संकल्प यहां से आते हैं, चलते फिरते। मेडिटेशन क्या है, राजयोग मेडिटेशन क्या है, ज्ञान क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ, सत्य को समझना, सत्य की समझ में जीवन, सत्य को समझ। और राजयोग मेडिटेशन क्या है, रियलाइजिंग द ट्रुथ, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, सत्य को अनुभव करना, बीइंग द ट्रुथ, लिविंग द ट्रुथ, सत्य को जीना, सत्य बनना। सत्य कोई जीना जो है सुबह शाम नहीं होता, आधा घंटा सुबह अमृत वेला, आधा घंटा शाम को, नहीं, सांस हम आधा घंटा सुबह शाम नहीं लेते हैं, हम सांस कितनी देर लेते हैं, हर मिनट लेते हैं ना, एक मिनट में 14 बार सांस लेते हैं। तो हमारा भी हर समय, हर श्वासों श्वास हमें यह अनुभव करते रहना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इसमें हमें विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, हमको इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कभी हमको इमेजिन करने के लिए नहीं कहा, बाबा ने कभी हमको विजुलाइज करने के लिए नहीं कहा है। बाबा ने पीछे भी कहा, परसों की मुरली में भी कहा, रिवाइज करो, रियलाइज करो, सत्य को रिवाइज करना और सत्य को रियलाइज करना, अनुभव करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते, खाते पीते, सैर करते, हर समय ये अनुभव करते रहो, मैं कौन हूं, मैं देह नहीं, मैं देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं ये मैटर नहीं हूं, 5 तत्वों का बना पुतला नहीं हूं, मैं इसको चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु ऊर्जा हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं एनर्जी हूं, मैं चैतन्य एनर्जी हूं। इस देह को चलाने वाली उस ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं, इन आंखों से या किसी मशीन से देख नहीं सकते हैं, उस ऊर्जा को हम अनुभव कर सकते हैं। आम में मीठा, हमें आम में मीठे को आप देख सकते हो, आम मीठा होता है ना, खा के देखते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, आम चख के देखो कितना मीठा है, कितना बढ़िया टेस्ट है। तो क्या हुआ, आम चख के देखा आपने कितना मीठा, मीठा दिखाई दिया क्या आपको, आपने आम खाया, खा के आपने देखा क्या, अनुभव किया कि देखा नहीं, चमकता हुआ सितारा है, ये तो मीठा चमकता हुआ सितारा है क्या, मीठा अनुभव किया ना। ऐसे मुझे चलते फिरते आत्मा को अनुभव करना कि मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, आंखों से मैं आत्मा देख रही हूं, आत्मा से ऐसी एनर्जी जा रही है जिससे मैं देख पा रहा हूं, आत्मा से हार्ट को ऐसी एनर्जी जा रही है जिससे हार्ट चल रहा है, आत्मा से कौन सी ऐसी एनर्जी जा रही है हार्ट चल रहा है, आत्मा से ऐसी कौन सी एनर्जी जा रही है जिससे सांस चल रहा है, आत्मा से ऐसी कौन सी एनर्जी मेरे लीवर में पेट में जा रही है जिससे पेट में खाना पच रहा है, आत्मा से ऐसी कौन सी एनर्जी मेरे पैरों में जा रही है जिससे मैं चल पा रहा हूं, आत्मा से ऐसी कौन सी एनर्जी मेरे ब्रेन में जा रही है जिससे ब्रेन सोच पा रहा है। ये अंदर चिंतन लगातार चलते रहना चाहिए, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। ये आत्मा की जो 7 ऊर्जाएं हैं, ज्ञान, ज्ञान माने सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्यार, अतिंद्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियां, परमात्मा इन 7ों एनर्जी का सागर है, पावर हाउस है। मेरे पास 7ों एनर्जी खत्म हो गई है, लगभग 2-3% बची है, एक टिमटिमाता सितारा सा बचा है सिर्फ, उसमें थोड़ी सी लाइट है, किंतु परमात्मा पावर हाउस है। तो मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, तो इसको अनुभव करते रहो चलते फिरते। बाबा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया है, मैं बाबा का बन गया हूं, बाबा ने मुझे अपना बना लिया है, ये मुझे बड़ी सबसे बड़ी लॉटरी मिली है। पर मैं तभी बाबा का बन सकता हूं जब देह ये पुरानी करेंसी को छोड़ दूं, देह भान, देह के संबंधों का भान, देह के संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देह के स्वभाव संस्कार का भान। ये पुराने जन्म में था मेरे साथ, अब मैं ब्राह्मण बना हूं। ब्राह्मण का मतलब क्या है? जैसे ब्रह्मा का अर्थ है ब्राह्मण, बेहद मां, बेहद की मां, सारे विश्व की मां, सब विश्व के जितने मनुष्य सबकी मां ब्रह्मा माना, जैसे बेहद की मां, ऐसी ब्राह्मण माना ब्राह्मण बेहद, अर्थात ब्राह्मण वो है जिसके मन में और बुद्धि में बेहद है, हद नहीं। बाबा बेहद है, ब्रह्मा बाबा की भी, ब्रह्मा बाबा भी बेहद में चला गया है, तो मुझे भी क्या करना है अभी, बेहद, मुझे अपनी बुद्धि में और मन में बेहद को रखना है। बेहद क्या है? देह हद है, देह के संबंध हद है, हद माना जो आज है कल नहीं रहेंगे, लिमिटेड है। देह के पदार्थ हद है, आज है कल नहीं होंगे। देह के संपर्क हद है, देह के स्वभाव संस्कार हद है, आज है कल नहीं रहेंगे। किंतु बेहद माना आत्मा बेहद है, जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। परमात्मा बेहद है, जो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। आत्मा परमात्मा के संबंध बेहद है, जो न कभी पैदा होते हैं न कभी मरते हैं, सदा ही है। और ये ड्रामा बेहद है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अभी, बाबा मैं ब्राह्मण बन गया हूं। ब्राह्मण माना जो बाबा की गोद में बैठा है, ब्राह्मण का अर्थ ही है जो अभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में। हम छोटे बच्चे हैं ना, तो बाबा की गोद में, बाबा हमको गोद में बैठ के पढ़ाता है। भले हम देखने में यहां दिखाई देते हैं, किंतु हम बाबा की गोद में ही बैठे हैं, बाबा की गोद में ही चल फिर रहे हैं, बाबा की गोद में ही खा रहे हैं, बेहद में हैं हम। तो इसका अनुभव लगातार करते रहे। तो जब मैं बाबा की गोद में, बाबा मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है। इसलिए अब जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, है ना। कहते ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथ में, उसके हाथ है, है ना। तो ये हमको नशा होना चाहिए। और फिर जो होने वाला है आज शाम को, क्या होने वाला है, बहुत बहुत इससे भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब मैं बाबा की हर राय पे चलता हूं। छोटी सी बात भी होती है तो बाबा से पूछता हूं, बाबा ये करूं, आप क्या कहते हो, मैं करूं, वो मुझे भाई ऐसे कहता है, वो बहन ऐसे कहते, मैं करूं, नहीं बच्चे ऐसे नहीं करो, अच्छा बाबा नहीं करता। क्यों, बाबा कितने दूर है मेरे से, बाबा मुझसे कितने दूर है, एक सोच की दूरी पर है ना, सोचा और पहुंचा, और सोचने की भी बात नहीं है, हूं ही बाबा की गोद में, है ना। तो बाबा से पूछ लो, तुरंत पूछ लो, साथ साथ पूछ लो, क्योंकि पुरानी करेंसी तो खत्म हो गई, हमने तो चेंज ही कर लिया अभी, है ना, नई करेंसी तो चालू हो गई है ना। ब्राह्मणों के लिए संसार में तो उस करेंसी, वही करेंसी चलती है। पुरानी करेंसी ब्राह्मणों के संसार में चलती है क्या? ब्राह्मणों के संसार में पुरानी करेंसी तो चलती ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। तो हमारे यहां तो नई करेंसी चलती है ना सिर्फ, क्या पुरानी करेंसी भी चलती है? नई करेंसी चलती है ना, तो नई करेंसी जो नई है, हमारे जो दैवी गुण है उनकी, वही करेंसी हमारे यहां चलती है। आत्मिक स्थिति ही चलती है, है ना। परमात्मा के साथ का अनुभव ही चलता है, एक एक परमात्मा के साथ का एक एक संबंध की अनुभूति, वही करेंसी हमारे यहां चलती है, वही करेंसी हमको यूज करनी है। और कल क्या होने वाला है? कल उससे भी अच्छा होने वाला है। परसों क्या होने वाला है? उससे भी अच्छा। और भविष्य में क्या होने वाला है उसकी तो बात ही मत पूछो, नहीं हम क्या बनने वाले, देवी देवता बनने वाले, सोने हीरे जवाहरात के मेले में रहेंगे, है ना। आधा 25 साल कुछ कमाना नहीं पड़ेगा, बस दो ही काम करने, खाना सोना, सोने की दुनिया ना, खाएंगे सोएंगे डांस करेंगे, बस तीन ही काम करने, खाना है, खाना पीना है, सोना है और राज करना है, बस तीन ही तो काम करने हैं, और तो कुछ काम है ही नहीं हमें 2500 साल तक। बल्कि मैं तो कहता हूं 4950 साल तक हम मस्त रहने वाले हैं। इस जन्म में भी इतने अच्छे हैं, लास्ट के 50 साल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, बाबा गोदी में ले लेता है, जैसे थोड़ा रोना शुरू करते ना हम, कहते आ जाओ बच्चे आ जाओ मेरी गोदी में आ जाओ। तो हम तो 5000 साल ही मस्त रहने वाले हैं, नहीं तो ब्राह्मण तो है ही विशेष, हम विशेष आत्मा है, तो बाबा के सगे बच्चे हैं, लगे बच्चे थोड़ी ना कोई, हम मतलब के समय याद करने वाले नहीं है, सगे बच्चे ना, मातेले बच्चे हैं, सोतेले बच्चे तो नहीं है, सोतेले जो हाथ उठाओ जरा, एक दो सोतेले तो हाथ उठाओ, कोई सोतेला तो कोई भी नहीं है बाबा का बच्चा ना। तो ये अनुभव एक एक चलते फिरते हर श्वासों श्वास करते रहो हर समय। मैं इसको ABCD कहता हूं ना, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो चलते फिरते इसका अनुभव करते, अनुभव कैसे करते हैं, जब भी कोई विचार, ये विचार है, ये बाबा के जो महावाक्य है मुरली में विचार है ना, ये विचारों को हम जब गहराई से करते हैं तो हमारी भावना पैदा होती है। जैसे मैं मुरली मैंने सुबह से पढ़ी, मेरी जेब में रहती है हमेशा मुरली, ये भी दिल के पास दिल यहां है ना, मेरी मुरली जेब में रहती है हमेशा ना, मेरा चार्ट और हमेशा मुरली, देखो ये आज की मुरली है ना, ये दिल के पास ही रहती है ना। तो मुरली जो है बाबा की मुरली है ना, इसको सदा दिल के पास ही रखना चाहिए, है ना, लव लेटर है ना, बाबा का लव लेटर है। तो ये मुरली तो सुबह से कितनी बार पढ़ी होगी, मुझे मैं गिन सकता हूं कितनी बार पढ़ी होगी, देखी होगी, एक एक लाइन दो दो लाइन पूरी मुरली भी पढ़ लेता हूं बीच बीच में, 3 बार तो मैंने मुरली पूरी पढ़ी है अभी तक, 1 बार सुनी है और बीच में कितनी बार पढ़ी मुझे पता नहीं है अभी, है ना। तो कितनी बाबा की मुरली में कितनी गहराई है, कितनी गहराई है, उसको चलते फिरते उठते बैठते इसी को अनुभव करते रहना। तो इसको बार बार पढ़ता हूं, बार बार पढ़ता हूं, बार बार मन में संकल्प चलते हैं, बार बार इसी बात को गहराई में जाता हूं। जब कोई भी संकल्प हम बहुत गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, तो वह भावना में परिवर्तन हो जाता है और भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं। तो मेरे से वाइब्रेशन निकलने शुरू होते हैं जो आसपास के वायुमंडल को असर करने लगते हैं, और जैसे इसी भावना को मैं लंबा कर देता हूं कि सर बाबा ने कहा ना, आज तुम्हारा मर्जी हुआ जन्म है, तुम्हारी लॉटरी है, जो जीते जी मरते नहीं उनका मर्जी हुआ जन्म नहीं, उनको तो खुशी का पारा चढ़ नहीं सकता है। तो जैसे मुझे ये लाइन मैं बार बार मेरे को बुद्धि में घूम रही है सुबह से ना, तो मैं चेक कर रहा हूं सुबह से, मैं मरा कि नहीं मरा, पूरी तरह से मरा हूं कि नहीं मरा हूं, मेरी देह में, मेरे को किसी देह में अट्रैक्शन तो नहीं है, अपनी देह में कोई अट्रैक्शन तो नहीं है, किसी और की तरफ अट्रैक्शन तो नहीं, किसी संबंध संपर्क में अट्रैक्शन तो नहीं है, खिंचाव तो नहीं होता किसी से, मुझे किसी देह के पदार्थ से खिंचाव तो नहीं, कपड़ों से खिंचाव तो नहीं है, मैंने कपड़े कैसे पहनता हूं क्या करता हूं, है ना, किसी चीज से खिंचाव तो नहीं होता, आकर्षण तो नहीं होता है। सुबह से इसी में लगाऊं, है ना, क्योंकि फिर मैं मर्जीवा नहीं हूं, तो मेरे को बाबा अपना बाबा का बनूंगा नहीं, तो मुझे लॉटरी मिलेगी नहीं, है ना, मैं सरों का वर्षा मिलेगा नहीं, तो सुबह से इसी में। तो ये इस भावना को लंबा कर दिया मैंने ना, अब मेरी वृत्ति बन गई। वृत्ति कैसी बन गई, जब मैं इसको भावना को लंबा कर देता हूं मेरी वृत्ति बन जाती, मतलब एक सर्कल बन जाता है, वृत्त बन गया। अब यही संकल्प बार बार मेरे अंदर घूमता जा रहा, तो वृत्ति से वायुमंडल पैदा होता है, तो मेरे आसपास वायुमंडल पैदा हो गया है ना। इसे कहते हैं आभा मंडल, इसे कहते हैं प्रभा मंडल, वायुमंडल वातावरण बन गया है ना। वो जितना मैं इसका अभ्यास करूंगा कि बाबा मैं ब्राह्मण हूं, बाबा का बच्चा बना हूं, बाबा ने मुझे अपना बनाया है, मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरी मां भी है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना और प्यार दे रहा है, बाप के रूप में मुझे मुझे त्रिनेत्री बना दिया बाबा ने, टीचर के रूप में मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया, सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान देकर मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया, और सतगुरु के रूप में बाबा ने मुझे श्रीमद देकर के मुझे त्रिलोकी नाथ बना दिया या त्रिलोकदर्शी बना दिया, मुझे तीनों लोकों में जाने की छुट्टी है, जब चाहे मैं सूक्ष्म स्थान में जाऊं, जब चाहे परम धाम में जाऊं और जब चाहे सुख धाम में भी जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे एक ऐसा पास दे दिया बाबा ने, पासपोर्ट और वीजा दोनों दे दिए, मल्टीपल एंट्री वीजा दे दिया, चाहे मैं आधी रात जाऊं मुझे कोई रोकने वाला नहीं। बंधु के रूप में बाबा ने मुझे क्या किया, बंधु बना बड़ा भाई। बाबा कहता बच्चे, छोटा बड़ा भाई छोटे भाई को क्या बोलता है, तुम इतना बोझ उठा के क्यों चलता, चलता मेरे को दे दे। तो बाबा कहते तुम्हारा जो भी लौकिक अलौकिक बोझ है मेरे को दे दे। मैंने सारा लौकिक अलौकिक बोझ सब अपना बाबा को दे दिया, मैं खाली हाथ चलता हूं अभी। सखा के रूप में, दोस्त के रूप में मैं बाबा को जो बातें मैं किसको बता नहीं सकता हूं, कुछ गलतियां हो जाती जीवन में, सबसे गलतियां होती हैं, सबसे कोई पापकर्म होते हैं, मैं बाबा को रोज अपने मन की हर बात, मुझसे जो भी पापकर्म होते हैं सारे दिन में हो जाते हैं, जाने अनजाने हो जाते हैं, कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, तो मैं बाबा को लिख देता हूं, चिट्ठी लिख देता हूं, बाबा मुझसे आज ही गलती हो गई, बाबा मैंने उसको ऐसे, उसने ऐसा किया, मैंने उसको आंख दिखा दी, बाबा मैंने ऐसे किया, मैंने मेरे को थोड़ा अंदर फील कर लिया, मैंने बाबा मेरे को ऐसे हुआ ना इतने बजे, उसने मेरे को ऐसे किया था, मैंने उसको ऐसे कह दिया, मुझे कहना नहीं चाहिए था, मेरे को फील हुआ मेरे को, पर मैंने कह दिया। तो जो जो थोड़ी 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 बातें भी, कुछ गलतियां हो जाती हैं, बाबा को लिख देता हूं, दोस्त के रूप में सब बातें बता देता हूं लिख करके, है ना। साजन के रूप में मुझे दैवी गुण सजाता रहता है ना, सज्जन के रूप में जो मेरे अंदर बीमारियां है ना, थोड़ा देहभान बचा हुआ होगा, थोड़ा सा देह के संबंधों का भान बचा है, कहीं थोड़ा लगाव झुकाव प्रभाव टकराव फंसा हुआ है किसी में, है ना, कोई मन में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है किसी बात का, बाबा उसको ऑपरेशन करता रहता है ना। कोई विकार का अंश बचा है, थोड़ा आलस कहीं होगा, कहीं किसी में दोष दिखाई दिया, बाबा उसको ऑपरेशन करता रहता, निकालता रहता है बच्चे निकाल के। हम मैं क्या क्या करते हैं, बाबा ऑपरेशन करके निकालता है, हम वापस डाल देते हैं, बाबा निकालता है हम डाल देते हैं वापस, है ना। सर्जन के रूप में अनुभव करो, ये मैंने जो बता रहा हूं ना, एक चीज को अनुभव करो, एक एक संबंध के अनुभव करो, गहराई से अनुभव करो, तो ऐसे बार 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 ऐसे ना। फिर बच्चे के रूप में मेरा वारिस है, अपना तन मन धन, पुराना तन मन उसको दे दिया तो मैं उसको वारिस बना दिया, है ना। अपना समय संकल्प श्वास उसको दे दिया तो वो मेरा, मैं उसका, वो मेरा वारिस, मैं, वो मेरा वारिस है ना, मैं उस पर बलिहार जाता हूं। तो ऐसे एक एक संबंध की बहुत गहराई से अनुभव करो, तो जितना इस भावना को हम बढ़ाते जाएंगे, हमारी वृत्ति बनते जाएगी, वायुमंडल बनता जाता है, उतना मेरा आभा मंडल परिवर्तन। और जिस इस आभा मंडल के अंदर फिर मैं क्या करता हूं, जब इस आभा मंडल में रहकर कार्य करता हूं, इस वायुमंडल में रहकर कार्य करता हूं, तो मेरे को जब बाबा की मुरली के अनुसार कोई कर्म करता हूं, एक बार करता हूं तो इंप्रेशन बन जाता है, फिर मेरे को और भी, मैं लोगों के अनुभव सुनता हूं, लोग क्लासेस में कोई बात होती है मुरली के, और मुरलियां पढ़ता हूं, तो बाबा बार बार वही बातों को रीइन्फोर्स करता है, तो मेरा बिलीफ बन जाता है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ हर संबंध से मेरे साथ है, मां के रूप में साथ है, बाप के रूप में साथ है, टीचर के रूप में साथ है, बंधु के रूप में साथ है, सखा के रूप में साथ है, सतगुरु के रूप में साथ है, साजन के रूप में साथ है, सज्जन के रूप में साथ है, बच्चे के रूप में साथ है, और भी कोई संबंध है, गाड़ी चलाता हूं गाड़ी ड्राइवर के रूप में साथ है, कुछ भी काम है तो साथ में है, हॉस्पिटल में हूं तो हॉस्पिटल में मेरे साथ है, है ना, हर जगह मेरे साथ है। तो ऐसा बाप के साथ एक एक चीज का अनुभव करते हैं तो मेरे नए बिलीफ सिस्टम बदल गए, और जब मैं बाबा के साथ के अनुभव बार बार करता रहता हूं तो मेरे नए संस्कार बन रहे हैं, नई स्मृतियां बन रही, अब स्मृति स्वरूप बन रहा हूं, इतनी स्मृति रिकॉर्ड होती जा रही है, एक बार स्मृति रिकॉर्ड होने के बाद बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। हमारे पास दो तरह की बुद्धि है, एक आसुरी बुद्धि है, एक दिव्य बुद्धि है, एक बाबा की दिव्य बुद्धि है, एक आसुरी बुद्धि है। अगर हमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, दिव्य गुणों की अनुभूति हो जाती है, बाबा के साथ की अनुभूति हो जाती है, ज्ञान की गहराई की अनुभूति हो जाती है, तो आसुरी बुद्धि बंद हो जाती है, सिर्फ दिव्य बुद्धि काम करती है। अनुभव होने के बाद खाली ज्ञान के पॉइंट्स अगर आपके बुद्धि में हैं और आपने अनुभव नहीं किया है तो फिर आसुरी बुद्धि बार बार भटका देती है, धोखा दे देती है। इसलिए अनुभवी मूर्त आत्मा, इसलिए कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो जिसके पास आ गई वो कभी भी धोखा नहीं खाता है, क्योंकि उसको आसुरी बुद्धि है ही नहीं, आसुरी बुद्धि उसके साथ काम ही नहीं करती है, आसुरी बुद्धि का डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। तो आसुरी बुद्धि का डिपार्टमेंट बंद करने के लिए हमको अनुभवी मूर्त बनना बहुत जरूरी है। तो इसी से हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। आभा मंडल बड़ा होने के कारण अब ये मेरा एक कवच बन जाता है, कवच माना एक शील्ड बन जाती है। जैसे हम युद्ध के मैदान में होते हैं ना, युद्ध के मैदान में लोग लोहे का कवच पहन के जाते हैं, है ना, ताकि उनको गोली ना लगे, उनको तलवार का भगाव ना हो। अच्छा, ये हमारा कवच है। हम हर समय युद्ध के मैदान में हैं। हम अंदर से, ये माया कहाँ है? माया बाहर नहीं है, माया अंदर बैठी है, माया अंदर बैठी है। ये विकार अंदर रिकॉर्ड है, हमारे मस्तिष्क में रिकॉर्ड है। एक हार्ड कॉपी ब्रेन में है, सॉफ्ट कॉपी आत्मा में है। तो अंदर से वो अटैक करती है। और यह आभा मंडल जब हमें रहता है और साथ में जो हमारे संबंधी हैं, हमारे संपर्क वाले हैं, ये भी इसके थ्रू भी हमारे ऊपर माया अटैक करती है, इनके थ्रू भी माया अटैक करती है। तो हमें जब आभा मंडल में रहते हैं तो अंदर का असर भी खत्म करती है वो आभा मंडल, और बाहर से भी असर खत्म करती है। उस वायुमंडल के असर में हमें माया असर नहीं कर सकती है, हमारे पर कोई अटैक नहीं कर सकती है। इवन कोई बाहर के पॉल्यूशन का असर, किसी की गलत भावनाओं का असर, किसी के जादू का असर, किसी के पूरे वाइब्रेशंस का असर, इवन भूकंप भी आ जाए तो भूकंप भी मेरे वायुमंडल के अंदर घुस नहीं सकता है। जितना चाहो आप उतना अपना आभा मंडल बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो उसको 6 इंच का बना लो, चाहे तो 6 फुट का बना लो, चाहे 60 फुट का बना लो। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, है ना। तो कितना करना है, कितने कितने फुट का बनाना है बताओ, कितने फुट का बनाना है? 6 इंच का, 2 इंच का, 2 इंच का, 6 इंच का, 6 फुट का। आपका घर कितना बड़ा है? आपका घर 30x30 फुट का है, 30x40 फुट का है। कम से कम इतना तो बनाओ कि कम से कम पूरे घर में आपके आपके सेंटर में, टीचर बहनों का सेंटर है 50x100 फुट का है, तो कम से कम पूरे सेंटर में तो आभा मंडल रहे, ताकि सेंटर में कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो, किसी के मन में खराब संकल्प ना चले, वो आते ही परिवर्तन, सेंटर के अंदर आते ही परिवर्तन हो जाए। और कभी भूकंप आए तो सारा शहर के भले मकान टूट जाए, आपका शहर, आपका मकान नहीं टूटेगा, आपका सेंटर नहीं टूटेगा। जिस घर में आप रहते हैं वो मकान, वो उसमें भूकंप नहीं आएगा। अगर आपके आपके उसमें बाढ़ आ गई तो आपके आपका घर बाढ़ में नहीं जाएगा, क्योंकि नेचुरल जो आपका आभा मंडल है, वो नेचुरल जो भी क्लेमिटीज हैं, आपदाएं होंगी, वो उसको सेंस करती हैं। भुज का मकान आपको पता है ना, भुज के मकान जब भूकंप 2001 में भूकंप आया था, आसपास के मकान सभी गिर गए थे, किंतु भुज का मकान नहीं गिरा था, बाबा का झंडा भी नहीं हिला था, है ना, क्योंकि उस समय सेंटर में योग चल रहा था, है ना? तो सेंटर में, इसलिए अपने घर में चलते फिरते उठते बैठते श्वासों श्वास हर सेकंड हर संकल्प योग का अभ्यास करने की आवश्यकता है। बाबा और बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, है ना। एक एक गुण पवित्रता का, जैसे एक एक गुण देखो, एक तो ज्ञान है ना, ज्ञान, गुण और शक्तियां, 3 खजाने हमारे पास है, ज्ञान, गुण और शक्तियां। गुण, ज्ञान तो हो गया हमारा ये ABCD, ये मुरली। गुण क्या है? पवित्रता गुण है, शांति गुण है, प्यार गुण है, खुशी गुण है, आनंद गुण है। तो ये 5 विशेष गुण है, किससे पैदा होते हैं? जितना आप ABCD का मनन चिंतन मंथन करते हो, इस मुरली का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते हो, जितना इसको बार बार रिवाइज करते हो, जितना इसको गहराई में जाते हो, भावना बनाते हो, वाइब्रेशन पैदा करते हो, जितना इस भावना को लंबा करते रहते, सारा दिन इसी को सोचते रहते हो, है ना, इसी भावना में रहते हो, उतना वृत्ति बनती जाती, उतना बड़ा आभा मंडल बनता जाता है, और आभा मंडल से, वृत्ति से वायुमंडल बनता जाता है। जितना बड़ा वायुमंडल बनता जाएगा, जितना हम करेंगे उतना वायुमंडल बनता जाएगा, और यही अनुभवी मूर्त है। उस आभा मंडल के अंदर आपको दुनियावी वाइब्रेशन असर नहीं करेंगे, किसी के वाइब्रेशन कैसे भी आपको असर नहीं करेंगे, और यही आपको हील करते रहेंगे। ना जाने कौन कौन सी आपदाएं आनी बाकी हैं, अपने कर्मों का कौन कौन सा हिसाब किताब होना बाकी है, पता नहीं है, हमको नहीं पता है। अगले क्षण क्या होने वाला, हमको पता नहीं है। यही हमारी हीलिंग, यही हमारा कवच है। इसी कवच के द्वारा हम इतने आभा मंडल को फैला सकते हैं। जैसे दादी दादी आती है, जब क्लास में आती है तो उस पूरा हॉल में कैसे वाइब्रेशन फैल जाते, कैसा वायुमंडल बन जाता है, रूहानी वायुमंडल बन जाता है ना। जब बाबा आता है, बाबा क्या होता है, ये 300 फुट का हॉल है, 340 फुट हॉल में रूहानी सब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। इधर भी साइड पार्क, इसमें गार्डन में लोग बैठे हैं, उसके पीछे भी बैठे हैं, कितना 500 फुट 600 फुट तक क्या हो जाता है, कैसा रूहानी वायुमंडल हो जाता है, सब अपने को आत्मा, सब आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं। तो हमारा बाबा ऐसा है, हमारी दादी ऐसी है, तो हम कैसे होने चाहिए। दादी का 600 फुट का वायुमंडल बन जाता है और हमारा कितना बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 50 फुट तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो 50 फुट आगे, 50 फुट पीछे, 50 फुट इधर, 50 फुट इधर, कितना हो गया, 100 फुट का एरिया हो गया, नहीं हो गया। तो जहां भी आप जाओगे 100 फुट तक कोई भी आपका किसी का डैमेज नहीं होगा, और 100 फुट के अंदर जो भी आएगा ना वो भी बदल जाएगा। तो अभी इसका समय, ये मनसा सेवा है, और उससे फिर वाइब्रेशन निकलेंगे। वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं, जब सबको आप आत्मा देखेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, तो सारे विश्व के हर आत्मा को टच होगा वो वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन हजारों किलोमीटर दूर, अमेरिका तक भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, चिली में भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते, न्यूजीलैंड तक भी जाते हैं, पूरे वायुमंडल तक जाते हैं, सूक्ष्मतम तक भी जाते हैं। आपकी हर बात सूक्ष्मतम तक भी पहुंचेगी। सूक्ष्मतम कुछ और नहीं है, बाबा का दिल है, बाबा का दिल तख्त है जिसपे ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, और ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा बैठा हुआ है। तो शिव बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा बैठा है, वही बाप दादा है। तो उस दिल में कौन पहुंचेगा, जो बाबा का आज्ञाकारी होगा। आज्ञाकारी कौन होगा, आज्ञाकारी पहली आज्ञा क्या, सदा पवित्र भव। पवित्र भव माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। किसी भी देहधारी से लगाव रखना भी अपवित्रता है। किसी भी देहधारी से, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, उसके तरफ झुकाव होना भी अपवित्रता है। किसी भी देहधारी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है। किसी देहधारी से टकराव होना भी अपवित्रता है। तो किसी से भी टकराव मत रखो। लगाव झुकाव प्रभाव, जब योग करने बैठोगे लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाला ही याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। बाबा लगाव रखना है तो बाबा से रखो, झुकाव रखना है बाबा से रखो, प्रभाव में आना बाबा के आओ, टकराव तो किसी से नहीं रखो। तो ये हमें ध्यान रखना, ब्राह्मणों का अपवित्रता लगाव झुकाव प्रभाव टकराव की है, उसे छोड़ो। जितने पवित्रता बढ़ाएंगे हम, इसका अनुभव करो। तो और किसी भी बात में, किस ड्रामा में कुछ भी होता है, उसमें क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन में भी ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, मुझे भी वैसे ही करके दिखाना है। ये है पवित्रता की परिभाषा। तो इस पवित्रता का अनुभव करो, इसके अनुभवी मूर्त बने। शांति माना ना पास का चिंता ना भविष्य की चिंता। मेरा बाबा ऐसा सोचता है, उसको कभी ना पास का चिंतन चलता ना भविष्य की चिंता चलती। वो वर्तमान में भी उसको वही संकल्प आता जो भविष्य में होने वाला है, ड्रामा में होने वाला है। तो मेरे को भी बाबा से कंबाइंड होके वही सोचना, बाबा से कंबाइंड होके सोचना है, बाबा से कंबाइंड होके देखना है, बाबा से कंबाइंड होके पढ़ना है, बाबा से कंबाइंड होके सुनना है। कोई मुझे कुछ सुनाना चाहता है, बाबा से पहले कंबाइंड हो जाओ। अच्छा भाई अभी सुनाओ, आप क्या सुनाना है। अकेले कभी मत सुनो, कंबाइंड होके सुनो। किसी को कोई बात सुनानी है, कंबाइंड होके सुनो। बोलना है, पहले कंबाइंड हो जाओ बाबा से फिर बोलो। खाना है, बाबा से कंबाइंड होके खाओ, है ना, बाबा से कंबाइंड होके चलो, बाबा से कंबाइंड होकर घर या ऑफिस में या दुकान पे कार्य स्थान पे कार्य करो, और बाबा से कंबाइंड होकर सो जाओ। ये है शांति। ऐसी शांति का अनुभव करो बाबा से कंबाइंड, ना पास्ट का कोई विचार चले ना भविष्य के विचार चले, इसमें खोए रहो। तो ये अनुभवी मूर्त, इसमें चलते फिरते खोए रहेंगे ना तो ये अनुभव हो जाएगा, अनुभवी मूर्त अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। पहले भावना बनेगी, फिर वृत्ति बनेगी, वायुमंडल बनेगा, और फिर अंदर रिकॉर्ड इंप्रेशन बन जाएंगे, बिलीफ सिस्टम, और नए संस्कार, नई स्मृति बन जाएंगे, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा, जब कोई स्थिति आएगी अपने आप ही हम अपने आप ऐसे बन जाएंगे। फिर रूहानी प्यार, रूहानी प्यार का मतलब क्या? रूहानी प्यार बाबा को, बाबा कैसा है? अंग्रेजी में मैं डेफिनेशन दूं बाबा के प्यार की, तो बाबा का प्यार कैसा है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग इन द यूनिवर्स। अर्थात विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ बाबा बिना शर्त के आदर के साथ उसको स्वीकार करता है और हर तरह की इसकी पालना देता है, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अनुसार पालना देता है और प्यार भी देता है। और हमारा प्यार क्या जजमेंटल हो जाता है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये तो बदलने वाला नहीं है, तो ये नहीं। बाबा आतंकवादी को भी उतना ही प्यार करता है जितना किसी को भी प्यार करता है, क्योंकि एक वो बाबा इस सृष्टि का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ है। जैसे एक फिल्म का प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, वो क्या करता है? वो हीरो को भी उतना ही प्यार करता है, हीरो को भी रिस्पेक्ट देता है और विलन को भी रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि फिल्म बिना हीरो के, हीरोइन के और विलन के बनती है क्या? वो विलन को भी पैसे देता है और हीरो को भी पैसे देता है, नहीं देता है। कि खाली विलन को मुफ्त में काम कराता है, डंडे मारता है और हीरो को पैसे देता है, ऐसे करता है क्या? वो सब, उस बाबा को हर चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ हमें गाली देने वाले भी चाहिए, इंसल्ट करने वाले भी चाहिए और महिमा करने वाले भी चाहिए, नहीं तभी तो मेरी फिल्म हिट बनेगी ना, नहीं तो मेरी फिल्म तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। लोग महिमा ही महिमा करते रहे तो दिमाग खराब हो जाएगा ना, नहीं तो मुझे भी सबको ही ऐसा प्यार जैसे बाबा बिना शर्त के आदर के साथ मेरे साथ, कोई कैसा भी कहे, कुछ भी करे मेरे साथ, मुझे उसको स्वीकार करना आदर के साथ और उसकी पूरी पालना देनी, उसको पूरा सहयोग देना, यह है रूहानी प्यार। ऐसे प्यार का अनुभव करो, चलते फिरते दो ऐसा प्यार सबको, तो रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब ऐसा प्यार रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाबा अपनी बाहें खोल के मैं बाबा के दिल में पहुंच जाऊंगा, बाबा के दिल में माना सूक्ष्म वतन में पहुंच जाऊंगा, बाबा मुझे अपनी बाहों में संभालेगा, बाबा कहेगा आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ, है ना। और ये जो फीलिंग है बाबा की गोदी में जाने की फीलिंग, ये इसको बोलते हैं अतिंद्रिय सुख। और ये फीलिंग ऐसी फीलिंग है जिसमें हमें ये महसूस होता है, आत्मा को महसूस होता है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इसमें संतुष्टता की फीलिंग होती है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और ये है सुपर सेंसेस जॉय, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति। इस फीलिंग में रहो बार बार, तो ये फीलिंग जितनी हम करेंगे, जितनी बढ़ाएंगे उतना हमको अतिंद्रिय सुख के अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। और जब आनंद माना, इससे फिर आनंद पैदा होता है, आनंद माना बस आनंद माना, अभी फिर हम आनंद की स्थिति में चले जाएंगे, मतलब हम बाबा के साथ उसमें समा जाएंगे, बाबा के लव में लीन हो जाएंगे। और जब बाबा के लव में, इसे आनंद कहते हैं एक्सटेसी, और जब उसमें चले जाएंगे, आनंद की स्थिति में चले जाएंगे, तो फिर हमें शक्तियां अनुभव होंगी, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सेव करने की शक्ति। ये सातों एनर्जी, आठों शक्ति हमको महसूस होंगी, तो तब इनका अनुभव होगा। सहन करेंगे तो सहन का अनुभव होगा। तो इस तरह से हम इसका अनुभव करते जाएं, एक एक गुण का, एक एक शक्ति का अनुभव करेंगे, तो हम अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, ठीक है। पर इसके लिए हमें करना होगा या सोचना होगा सिर्फ, और रिकॉर्ड होगा अंदर सारा, और तब हमारे लिए जीवन, हमारा ब्राह्मण जीवन सरल और सहज हो जाएगा, और तब हम दूसरों को अनुभव भी करा सकेंगे। ओम शांति।
पास में बुला लिया है पास। बाबा बाहों में उठा लिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
वतन की याद ने दुनिया